हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग और कृषा दूसरे पड़ाव में से बाहर निकल चुके थे। वो वहाँ से कुछ दूर निकले ही थे कि आदित्य सिंघानिया की सिक्योरिटी टीम ने उनकी तरफ गोली चलाई। वो उनसे काफी दूर थे, फिर भी शार्प शूटर ने निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगाया था। वो गोली युग के पैर पर आकर लगी थी। युग कुछ कदम लड़खड़ा गया। उसने पीछे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। फिर उसने कृषा की तरफ देखकर कहा, यहाँ से सीधे दौड़कर जाओ, तुम हाईवे पर पहुँच जाओगी, वहाँ जाकर तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी। तुम सबवे स्टेशन पहुँचो, मैं आ जाऊँगा। युग को गोली लगते ही कृषा घबरा गई थी। वो ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें गोली लगी है। मैंने कहा जाओ यहाँ से कृष, मैं खुद को देख लूँगा, अगर ये हम तक पहुँचे तो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, युग गुस्से में चिल्लाकर बोला। कृषा उसकी बात नहीं सुन रही थी, उसने अभी भी वहाँ से जाने से मना कर दिया। युग ने सामने की तरफ देखा तो पूरी टीम उनकी तरफ आ रही थी। युग ने कृषा के ड्रेस की तरफ देखा जिसके कमर पर एक स्कार्फ जैसा कुछ बंधा हुआ था। युग ने उसे खोला और अपने पैर के बांध लिया। उसने अपने तरफ आ रहे कुछ लोगों की तरफ शूट किया। उनमें से दो तीन लोग को गोली लग भी चुकी थी और इससे उनका ध्यान बट गया था। युग कृषा को लेकर वहां से जाने लगा। हालांकि उसे चोट लगी हुई थी, फिर भी वो अपनी तरफ से काफी तेज चलने की कोशिश कर रहा था। हेड सिक्योरिटी गार्ड ने अपने घायल गार्ड्स के पास मौजूद गार्ड से कहा, ये लोग अब बचेंगे नहीं, तो इन्हें बचाने के चक्कर में युग राणा को हाथ से मत जाने दो, उसे भी गोली लगी है, वो हमसे दूर नहीं भाग पाएगा। उसके ऑर्डर देने के साथ ही गोली लगे गार्ड्स को वहां पर छोड़कर बाकी के गार्ड्स युग के पीछे जाने लगे। वहीं युग उनसे थोड़ा और आगे जा चुका था। उसने रास्ते में अपना मोबाइल ऑन किया और कॉल कनेक्ट करते हुए किसी से चाइनीज लैंग्वेज में कहा, मैं अपनी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है, विद इन 5 मिनट्स। इतना कहकर कॉल कट हो गया। वो लोग इस वक्त एक खाली जगह पर थे जहाँ आसपास छुपने का कोई रास्ता नहीं था। गहरी रात होने की वजह से वो युग और कृषा को आसानी से ढूंढ नहीं सकते थे। बस उसी का फायदा उठाकर वो दोनों उनसे बचे हुए थे। युग और कृषा कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उनके पास से एक गाड़ी तेज गति से चलकर आई। दोनों जल्दी से उसमें बैठ गए और वहां से निकल गए। कृषा हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, ये इतनी जल्दी हेल्प लेकर कैसे आ गया? तुम इसे पहले भी तो बुला सकते थे। मुझे एग्जैक्टली दूसरे पड़ाव के रास्ते के बारे में पता नहीं था, फिर भी टेम्पल के आसपास के चारों डायरेक्शन में मैंने अपने आदमियों को सेफ्टी के लिए तैनात कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुला सकूं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हमारे पीछे आ जाएंगे, युग ने धीरे से जवाब में कहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि गोली लगने की वजह से उसे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, कृषा ने युग के पैर की तरफ देखकर कहा। ऑफ कोर्स, हम वहीं पर जा रहे हैं, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाकर वापस आ जाऊंगा, तुम्हें उससे पहले यहाँ से जाना होगा, ये तुम्हें इंडिया में, युग बोल रहा था तभी कृषा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम एनी टाइम मुझे ऑर्डर्स क्यों देते रहते हो, तुम्हें देख नहीं रहा कि तुम्हें इतनी चोट लगी है और ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आगे से मुझे ऑर्डर देना बंद करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई गुलाम नहीं, कृषा ने काफी गुस्से में कहा था। युग ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसकी तरफ देख रहा था। पहली बार उसने कृषा को गुस्से में देखा था। कृषा और युग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां जाते ही युग का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले उसकी गोली निकाली गई और फिर उसके बैंडेज कर दिया गया था। युग की सर्जरी लगभग 2 घंटे तक चली। सर्जरी होने के बाद युग 1 मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रुका। वो वहां से प्राइवेट जेट में वापस मुंबई के लिए निकल चुका था। वहीं इतने करीब होकर भी सिंघानिया फैमिली के इतने काबिल गार्ड्स युग को नहीं पकड़ पाए थे। इस वजह से अमृता और आदित्य सिंघानिया गुस्से में थे। वो दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके थे और वहां से डायमंड्स गायब थे। उनका हेड सिक्योरिटी एजेंट ब्रेड अभी भी उनसे कॉल पर कनेक्ट था। आदित्य सिंघानिया ने गुस्से में उससे कहा, ब्रेड, तुम अब बूढ़े हो गए हो, अमृता ने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। बट सर, आई ट्राइड माई बेस्ट, हर एक पड़ाव की चाबी वो इंसान अपने साथ लेकर घूम रहा है, तो हम ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्रेड ने जवाब दिया। उसकी बात सच भी थी। जब तक कृषा युग के साथ थी, उसे कोई नहीं रोक सकता था। आदित्य सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और सीधे कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने अमृता की तरफ देखकर कहा, हमें कैसे भी करके कृषा को वापस हमारे पास लाना होगा, अगर यही रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कृषा उससे प्यार करने लगी है, अब वो अपनी मर्जी से कभी हमारे पास वापस नहीं आना चाहेगी, अमृता ने जवाब दिया।
अपनी मर्जी से नहीं आना चाहेगी तो जबरदस्ती भी लाया जा सकता है। जैसे जबरदस्ती करके वो उसे लेकर गया था, वैसे ही हम उसे वापस लेकर आएंगे। कृषा उससे प्यार करने लगी है तो कुछ फीलिंग्स उसके दिल में भी कृषा के लिए होगी। मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगा। वो माफिया किंग भले ही बन जाए, लेकिन मेरी पोती उस लड़के के साथ कभी नहीं रहेगी, आदित्य सिंघानिया ने सख्ती के साथ कहा और फिर वहां से अमृता को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया। पहले पड़ाव से साथ अब वो दूसरे पड़ाव को भी खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शाम तक युग उन डायमंड्स के साथ मुंबई में अपने विला पहुंच चुका था। उसके पैर की गोली लगी हुई थी, इस वजह से एक बार डायमंड्स उसके साथ उसके घर पर ही थे। युग अपने रूम में आराम कर रहा था तो वहीं कृषा उसके लिए किचन में खाना बनवा रही थी। उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मलिक उसके साथ था। मलिक ने महसूस किया कृषा काफी उदास थी। वो वहां पर खड़ी बस खाना बनने का इंतजार कर रही थी। कृषा से बात करने के लिए मलिक ने ही शुरुआत करते हुए कहा, उनकी चोट लगभग 10 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। गोली ज्यादा अंदर तक नहीं गई थी, बस कुछ टिश्यूज ही डैमेज हुए हैं। 1 महीने बाद वो पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। 1 महीने का टाइम बहुत होता है। मैं जानती हूँ आप लोगों का काम नहीं रुकेगा, आप उसे घर बैठकर भी मैनेज कर सकते हो, पर उसे भी तो दर्द झेलना पड़ रहा है, कृषा ने उदास चेहरे के साथ कहा। उन्हें इस तरह की चोट पहले भी लग चुकी है, तो आप उनके दर्द की फिक्र मत कीजिए। खाना बन गया है, आप लेकर जा सकती हैं, और इस तरह परेशान चेहरे के सामने उनके सामने मत जाइएगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मलिक ने कृषा को समझाते हुए कहा। मलिक ने कृषा के हाथ में खाने की ट्रॉली दी और उसे स्माइल करने का इशारा किया। कृषा खाने की ट्रॉली के साथ ऊपर रूम में पहुंची। युग उस वक्त एक मैगजीन पढ़ रहा था। कृषा के अंदर आते ही युग ने मैगजीन बंद कर दी और उसकी तरफ देखने लगा। कृषा ने महसूस किया युग की आंखों में कोई भाव नहीं था। कृषा ने युग के पास आकर पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? शायद नीचे मलिक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, उसके बावजूद तुम इस उतरे हुए चेहरे के साथ मेरे सामने आई हो। मुझे ये सब नहीं पसंद है कृष, एक छोटी सी चोट से मैं मरने वाला नहीं हूँ, इतना आसान नहीं है डेविल की जान लेना, युग ने सिर हिलाकर कहा। कृषा ने युग को देखकर स्माइल पास की और फिर उसे खाना खिलाते हुए बोली, डॉक्टर ने तुम्हें स्पाइसी खाने से मना किया है, इसलिए ये थोड़ा फीका लगेगा तुम्हें। युग ने खाते हुए कहा, मुझे ऐसा खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कैसी भी सिचुएशन में रह सकता हूँ, और तुम्हें भी ऐसा बनना होगा कृष।
हाँ, तुम्हें कब मना कर रही हूँ, तुम्हारे पैर की चोट लगी हुई है और हमें 1 महीना वेट करना होगा, कृषा ने जवाब दिया। वो खुश हो रही थी कि किसी भी बहाने से सही, लेकिन उसे 1 महीने का टाइम मिल गया था। कृषा के फेस पर स्माइल देखकर युग ने ईविल स्माइल करते हुए कहा, क्या लगता है कृष, मेरी चोट लगने की वजह से तुम बच पाओगी? ऐसा नहीं होने वाला है, इनफैक्ट अब तो अच्छा है कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी ट्रेनिंग देख पाऊंगा। क्या पता सारा तुम्हारी बहन होने की वजह से तुम पर ज्यादा सख्ती न दिखा पाए, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। युग की बात सुनकर कृषा ने मुंह बनाकर कहा, तुम बहुत बुरे हो युग राणा, बट स्टिल आई लव यू। बोलते हुए कृषा युग के पास आई और उसके होठों पर हल्का सा किस किया। युग और कृषा काफी टाइम बाद अच्छे से बात कर रहे थे और क्लोज भी आ रहे थे। अब युग को कृषा के सामने बेरुखी का दिखावा भी नहीं करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिन कृषा के लिए थोड़ी मुश्किल थे, तो युग ने उसे परेशान करते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें राणा मेंशन में रहना है या नहीं। मान्या राणा वहां तुम्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करेगी और मैं उसके मामले में बीच में नहीं बोलने वाला। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन मुझे मौका मिला तो अच्छे से जवाब दूंगी, कृषा ने मुंह बनाकर कहा। फिर उसे अर्जुन की याद आई, जो कि उनके वहां से जाने से पहले वहीं पर था और अब वहां दिखाई नहीं दे रहा था। कृषा ने युग की तरफ देखकर सीरियस चेहरा बनाया और पूछा, अर्जुन भैया कहाँ है युग, क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया? क्या लगता है कृष, मुझे उन्हें छोड़ना चाहिए या नहीं? युग ने कृषा से ही पूछ लिया। कृषा ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में कहा, वो जैसे भी हों, लेकिन मेरे भाई हैं, प्लीज उन्हें जाने दो। ठीक है, फिर कल सुबह उन्हें भेज दूंगा, युग ने तुरंत कृषा की बात मान ली। इस बात पर कृषा को भी बहुत हैरानी हुई, फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा। खाना हो जाने के बाद कृषा ने वो ट्रॉली वहां से हटा दी और फिर वापस युग के पास आ गई। उसने युग के सीने पर अपना सिर रख रखा था और उससे बातें कर रही थी। युग कृषा के बालों से खेल रहा था।
उसका ध्यान कृषा की बातों में बिल्कुल नहीं था। युग ने अपने मन में कहा, तुम्हारे गार्ड्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट देने की? आदित्य सिंघानिया, कृष से प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि तुम मुझे चोट पहुँचाओगे? जो चोट तुमने मुझे दी है, सूद समेत कल तक तुम्हारे पास वापस पहुँच जाएगी। युग के चेहरे के भाव भले ही नॉर्मल हों, लेकिन उसकी आँखों में गुस्सा था। वही युग के दिल में चल रही बातों से अनजान कृषा बातें करते हुए उसके सीने पर सो चुकी थी। कृषा के सोते ही युग ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर लंगड़ाते हुए वो नीचे आ रहा था।